الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
جزاک اللہ خیر
کیسے مزاج
الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ جی بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کیا شعبان کی 29 تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں
جی شعبان المبارک کی 29 تاریخ کو یہ 29 تاریخ کے حوالے سے بھی ہوتا ہے اور 30 کے حوالے سے بھی بطور خاص اسی طرح کا سوال ہو
بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو یوم شک ہے جس کو شک کا دن کہتے ہیں وہ تو 30 شعبان ہوتی ہے کہ اس دن اس بات کا شبہ ہوتا ہے شک ہوتا ہے کہ نہ جانے چاند نظر آیا یا نہیں آیا تو اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا البتہ جو خواص ہیں جنہیں اس مسئلے کا علم ہے وہ خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں اسی طرح وہ شخص کے جس کا معمول تھا کہ ایک وہ اس دن روزہ رکھتا تھا مثلا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے اور وہ 30 شعبان آ گئی اس میں وہ نفل کی نیت سے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس تذبذب کے ساتھ رکھنا کہ اگر رمضان ہے تو فرض ہو گیا اور 30 شعبان ہے تو نفل ہو گیا اس انداز میں روزہ رکھنے سے حدیث پاک کے اندر جو منع کیا گیا ہے اس کی ممانعت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس انداز میں روزہ نہیں رکھ سکتے
یعنی ڈبل نیت اور ڈبل تذبذب
تذبذب کے اندر آ گیا کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے اس انداز میں روزہ جو ہوتا ہے وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے نیت کسی چیز کے مکمل پختہ ارادے کو بولتے ہیں اور باقی رہا 29 شعبان تو اس میں ویسے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اگر کوئی اس کو اس طرح رکھتا ہے کہ فرض کی طرح بنا لیتا ہے اس کو فرض سمجھ لیتا ہے رمضان کے حصے کے ساتھ ملا لیتا ہے تو اس سے منع کیا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ نہ رکھو مقدم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کو اس انداز میں رکھے جیسے اہل کتاب کے اوپر جو روزے فرض کیے گئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے اور روزے فرض قرار دے دیے تھے تو اس انداز میں روزے رکھنے سے یہ منع کیا گیا ورنہ اگر کوئی خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اسے فرض نہیں سمجھتا تو اس تاریخ کو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے
ٹھیک ہے اچھا یہ 29 تاریخ جیسے انہوں نے کہا آپ 30 کے حوالے سے یوم شک ہو سکتا ہے یا 29 کے حوالے سے بھی
30 کو ہوگا نا یوم شک دیکھیں یوم شک کا مطلب ہوتا ہے شک کا دن جس کے بارے میں بندے کو یہ شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ رمضان کا پہلا دن ہے یا نہیں ہے تو 29 کو تو ظاہر ہے کہ یہ شک ہوگا ہی نہیں جو شک ہوگا وہ تو 29 تاریخ ختم ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ 29 کی جو دن گزرا اب 30ویں کی رات کو چاند نظر آیا یا نہیں آیا آ گیا تو ظاہر ہے کہ دوسرے دن رمضان ہے نہیں نظر آیا تو یہ شک و شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا تو اس کو اس بنیاد پر یوم شک کہا گیا ہے
ٹھیک ہے اور جو ساحل نے پوچھا ہے کہ 29 تاریخ اس میں کوئی مسئلہ
نہیں ہے اس کی میں نے صورت حال بتا دی کہ کس صورت میں اس کی ممانعت ہوگی
ٹھیک ہے جی مزید سوال
جو مسجد کے پیسے انتظامیہ کے پاس ہوتی ہیں اس میں سے کوئی رکن جو ہے اپنے پرسنل اپنا ذاتی اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کروا سکتا ہے یعنی تاکہ مسجد کے پیسے سیو رہے
جی انتظامیہ میں سے کوئی ایک رکن مسجد کا جو پیسے ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے تو کیا کہنا
دیکھیں یہاں جو طریقہ کار ہے ہمیشہ سے وہ یہی ہوتا ہے کہ مسجد کا اپنا اکاؤنٹ بنتا ہے مسجد کے اکاؤنٹ میں ہی اسے جمع کروانے ہیں لیکن اگر بالفرض مسجد کا اکاؤنٹ کھلا ہوا نہیں ہے اور یہ حفاظت کی غرض سے اس کے اوپر سب کو اعتماد ہے اور یہ صرف حفاظت کے لیے اپنے اکاؤنٹ کے اندر اس کو رکھ دیتا ہے استعمال نہیں کرتا تو رکھوانے تک تو اجازت ہوگی کہ اس کے اندر رکھوا دے ताकि इसका पैसा जो मस्जिद का पैसा है वो महफूज रहे। लेकिन बहरहाल जो हालात हैं, जिस तरह का हमारा दौर है, वो सब जानते हैं कि किस तरह के मसाइल खड़े होते हैं, और बीसियों मसाइल हमारे पास इस हवाले से आए भी हैं कि जब इस तरह का मामला होता है तो बाज़ औक़ात वो रकम फिर जिसके पास रखवाई गई होती है वो इस्तेमाल कर डालता है, और फिर इसके बाद मस्जिद के जो अखराजात होते हैं उसके मामलात खड़े होते हैं और बहुत कुछ आगे फिर झगड़े खड़े होते हैं, फितने पैदा होते हैं। तो हत्तर इम्कान मुमकिन तौर पर फौरी तौर पर मस्जिद का अकाउंट खुलवाएं और उसी के अंदर मस्जिद की रकम ये रखवाएं।
ठीक है, और अगर किसी ने ये जो आपने बताया उसके मुताबिक रखे हुए हैं तो उनके लिए भी लाजिम होगा कि इसको इस्तेमाल नहीं करें।
बिल्कुल जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिफाजत की गर्ज से इन्होंने उसके अंदर रखे हुए हैं।
ठीक है जी, मजीद सवाल।
फरमाइए, अगर सुन्नत मुअक्कदा पड़े हो और उसकी दूसरी रकत में दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआए मशहूरा भी पढ़नी होती है, वो पर तई सीधी तरफ सलाम फेर दिया, फिर याद आया मेरी तो दूसरी रकत थी, अब क्या वो सज्दा साहब करेगा या दूसरी दोबारा से नमाज पढ़ेगा? इसका जवाब इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए।
माशाल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। इतना लंबा सवाल याद कैसे कर लेते हैं आप, जो पढ़ के भी सुनाते हैं दोबारा। कितनी उम्र कितनी है बच्चे का सवाल? तो
सर 8-7 साल के लिए
अमूमन इस बच्चे के सवाल तो आते रहते हैं। क्या फरमाते हैं? सुन्नत मौकदा, दुरूद इब्राहिमी, और फिर आगे कह रहे हैं कि सलाम भी फेर लिया, अब दो हुई या इसी पर ही कुछ आगे कर सकते
जी? अब देखें, सुन्नत मौकदा की बात की तो सुन्नत मौकदा में तो वैसे ही इसकी इजाज़त नहीं थी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए, उसका हुक्म इस हवाले से फ़र्जों की तरह ही है, फौरी खड़ा हो जाना चाहिए था। अब दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया, याद आ गया तो भी फ़ौरन खड़े हो जाते और आखिर में सिद्दा साहब कर लेते। बहरहाल जब सलाम फेर लिया तो अब याद आते ही फ़ौरन खड़े हो जाए और आखिर के अंदर सिद्दा साहब कर लें, इससे आपकी नमाज हो जाएगी।
एक सवाल है कि अजान से पहले सुन्नत पढ़ सकते हैं?
अजान से पहले सुन्नतें पढ़ेंगे हो तो जाएंगी, लेकिन जो तरीक़ेकार है वो यही है कि अजान होने के बाद ही सुन्नतें ये अदा की जाएं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस से यही मामूल रहा कि अजान होने के बाद ही सुन्नतें अदा की जाती हैं, और सुन्नत भी यही है। यानी जैसे असर की सुन्नतें हैं तो वो भी अजान के बाद ही पढ़ी जाती हैं, ज़ोर की सुन्नतें हैं तो वो भी अजान के बाद ही पढ़ी जाती हैं, इशा की सुन्नतें हैं तो वो भी अजान के बाद, इसी तरह फजर की सुन्नतें तो वो भी अजान के बाद ही पढ़ी जाती हैं। अगर पढ़ेंगे तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ होंगी, कि सुन्नत तरीक़ेकार ये नहीं है, मासूर तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ी तो बहरहाल सुन्नत उसकी इस एतबार से अदा हो गई कि ये सुन्नतें इसने पढ़ ली हैं, लेकिन इनका जो सुन्नत वक्त था उसमें ये अदायगी नहीं हुई,
वो अजान के बाद है।
जी, वो अजान के।
और नॉर्मल बाद का तो इसका एहतमाम, ज़ाहिर बाद नमाजों में तो ऐसा होता है वक्त काफ़ी देर पहले शुरू होगा, फिर जैसे फजर की अजान है तो वक्त तो शुरू पहले ही हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जमात के एतबार से 20 मिनट पहले अजान या 25 मिनट पहले अजान दी जाती है। लेकिन जैसे असर की नमाज है तो बाद का तो वक्त अजान के साथ 2-3 मिनट का फर्क,
जोर का भी यही है।
जी हाँ, ऐसे आप कर लें कि जिन जगहों पर 1 बजे या उसके करीब करीब नमाजें हो रही हैं तो वहाँ भी ये मसाइल हो सकते हैं। तो वक्त यूँ वक्त से पहले ही पढ़ ली तो
वक्त से पहले पढ़ ली तो फिर तो वो सुन्नतें हुई ना,
होंगी नहीं ना,
वो तो नफिल हो जाएंगी। अगर नफिल पढ़ने की इजाज़त थी उस वक्त में तो वो तो पढ़ने की इजाज़त थी, यानी सुन्नत के अतबार से इजाज़त नहीं है कि ये सुन्नतें आपके उस वक्त के अदा हुई। ये होता है आम तौर पे इस उस सूरत में होता है जबकि सफ़र वगैरह पर कहीं जाना होता है।
ठीक,
जैसे मिसाल के तौर पर फजर का अव्वल वक्त शुरू हुआ और किसी को निकलना होता है तो आम तौर पर उसमें ये करते हैं कि अजान वगैरह शुरू हुए बगैर सुन्नतें और फ़र्ज वगैरह पढ़ के फिर चले जाते हैं, या इसी तरह बाज़ औक़ात असर का वक्त शुरू हो चुका है और अभी अजान नहीं हुई तो फिर इसमें बसा औक़ात ये लोग पढ़ के किसी जगह पर जाना है तो चले जाते हैं। तो बिरल अगर उज़र है तो ठीक है, वरना ऐसा नहीं करना चाहिए।
जी मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि सदका व खैरात किन लोगों को देना अफजल है?
जी, किन लोगों को सदका खैरात?
देखें, जो सदका खैरात या जो भी इस तरह के अतियात वगैरह होते हैं, उसूल ये है कि जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत है, जो ज़रूरत का मौका है उसके अंदर इसे खर्च करना ये अवला है। अब किसी जगह पर मस्जिद बनाने की ज़रूरत है और वहाँ आप मदरसा बनाना चाहते हैं, हालांकि पहले से मदरसा वहाँ पर मौजूद है, तो अब अवला ये है कि आप मस्जिद बनाएं। या किसी जगह मदरसा बनाने की ज़रूरत है, मदरसे में खर्च करने की ज़रूरत है और वहाँ मस्जिद ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो अब आप मस्जिद बनाना चाहते हैं तो फिर ये हो तो जाएगा, सवाब तो मिलेगा, लेकिन बेहतर वही है कि जिसकी वहाँ पर ज़रूरत हो। तो इसका लिहाज रखेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। अब दावत इस्लामी के हवाले से कि अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है और मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर काम कर रही है, तो आपका जो अतिया है, जो आपके सदकात वगैरह हैं, ये किसी ऐसे मकाम पर लगे कि जहां आपकी रकम के जरिए ज्यादा से ज्यादा नेक काम किए जा सकते हैं, तो उसमें आपका फायदा भी ज्यादा है, सवाब भी आपको ज्यादा मिलेगा। यानी एक तो जरूरत को पेश नजर रखा हमने, दूसरा ये कि जिस जगह आपकी रकम गई है अगर वो रकम मुख्तलिफ चीजों के अंदर इस्तेमाल होती है तो इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको मुख्तलिफ चीजों का इसके अंदर सवाब भी मिलेगा। तो अब जो दावत इस्लामी का तरीक़ेकार है उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो जिनको आप कह लें कि जो मुस्तहक कहलाते हैं उन तक भी आपकी रकम जाती है, चाहे वो इजारे के तौर पर ही जाती हो, सैलरी के तौर पर ही जाती हो, मसाजिद मदारिस बनाना, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के ज़रिए हो रही होती हैं और बिलखसूस जो ये जो रवा साल है, जो साल गुजर रहा है, इसमें तो दावत इस्लामी को इंतहा दर्जे की ज़रूरत भी है, तो ये ज़रूरत का मौका भी है। तो कोशिश करके जो अपने अतियात वगैरह हैं ये दावत इस्लामी ही को दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए से आपको अफजल सदक़े का सवाब मिलेगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हदीस पाक में ये भी इरशाद फरमाया गया है कि अपने मरीजों का इलाज सदका करके भी करो, मरीजों का इलाज सदका करके। हम बाद औकात मर्ज में इलाज मुआलजा कर रहे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल इनका इंतखाब भी कर रहे होते हैं और डॉक्टरों की फीसें, हॉस्पिटल की फीसें या इसके साथ साथ लेबॉरेटरी की भी हज़ारों रुपए की फीसेस भी अदा कर रहे होते हैं और कई ऐसे हैं कि एक एक ऑपरेशन पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये अपनी जगह है, इलाज ठीक है, ज़ाहरी तौर पर ये इलाज करें मगर इन लाखों रुपए से दवाई मिलेगी, शिफा तो मिन जानिबिल्लाह होगी। हमें हदीस पाक में एक ये बात इरशाद फरमाई गई है कि अपने मरीजों का इलाज सदका करके भी करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, उससे भी इलाज करो। जहाँ ज़ाहरी सूरत ये इख्तियार की हुई है वहाँ साथ साथ ये अंदाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तो अपने इलाज पर जहाँ खर्च कर रहे हैं वहाँ इस तौर पर भी खर्च करें कि अल्लाह पाक इसकी बदौलत से, सदके की बदौलत अल्लाह ताला उस मर्ज को दूर फरमाए, मरीज को शिफा अता फरमाए। तो यूँ भी नाज़रीन इकराम जहाँ अपने ज़कात और दीगर चीज़ें ये अल्लाह की राह में निकालते हैं, इसी तरह अपनी परेशानियों के लिए, परेशानियों को दुख दर्द तकलीफ़ें ना आए, मुसीबतें ना पहुँचें, आप ये सदकात में निकाल। जिनके घरों पर बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं, तो वो अल्लाह की राह में इस नीयत से खर्च भी करें, सदका दें कि मर्ज का इसमें गोया के हमारे लिए इलाज है। अल्लाह पाक चाहेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर शिफा भी नसीब होगी। दावत इस्लामी ओवरऑल तकरीबन सारा साल ही वैसे तो काम जारी हैं और हम आम तौर पर जिन कामों को फलाही काम भी समझते हैं, हसन साहब इलाज मुआलजे का काम हो या वैसे लोगों की मदद करना राशन के ज़रिए या कोई मुश्किल वक्त के ज़रिए, तो दावत इस्लामी तो अब कई इस तरह के शोभा जात में, यानी कई लोगों का अपनी अपनी ख्वाहिशात होती है कि हम इसमें खर्च करें, इसमें खर्च करें, तो ये सारे अंदाज दावत इस्लामी में मैसर हैं।
बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने यही अर्ज़ किया कि देखें हम अंदाजे से तो कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते, लेकिन एक हदीस पाक में ये इरशाद फरमाया कि जो किसी परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाएगा। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद याखा नईमी रहमतुल्लाहि तआला ने यह फरमाया कि इसका माना यह है कि जो मस्जिद के अंदर मामूली सा हिस्सा भी लेता है तो अल्लाह पाक उसको पूरी मस्जिद बनाने का सवाब अता, यानी उसने एक हिस्सा डाला उसके अंदर तो अल्लाह पाक ने उसको पूरी मस्जिद बनाने का सवाब अता फरमा दिया। तो अल्लाह की रहमत से तो कोई बईद नहीं है, अगर हम इतना हम इस तंजीम के साथ ताउन करेंगे तो मुमकिन है कि इन तमाम कामों के अंदर हमें जो है वो ताउन करने का सवाब हासिल हो जाए। यानी ये जितने भी काम ये लिखे हुए आ रहे हैं, दीनी इस्लाही फलाही खैरखाई रूहानी اور بھلائی کے کام. تو یہ جتنے کام ہیں ان کے اندر جو بھی بھلائیاں ہو رہی ہیں, خیر ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ان تمام کا ثواب اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما دے. اس کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں ہے, اور اس نیت کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا. جی مزید سوال.
میں جی منت مندی سی دعا کر, میں عمرے سے گیا نا جی, 3 دن کا قافلے کا سفر کر سن, لیکن عمرے سے میں چلا گیا جی, جب واپس آیا تو میں بیمار ہو گیا جی, اس قابل نہیں رہا کہ میں مطلب سفر کر سکوں. یہ حدیث کے کریں
اللہ پاک آپ کو شفا دے, تندرستی عطا فرمائے. 3 دن کے مدنی قافلے کی منت تھی کہ عمرے پر گیا تو 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا, اس کے بعد بیمار ہو گئے.
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ تھوڑی دن بات کر لیجیے گا.
ٹھیک,
جب اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے تو چونکہ آپ نے ایک چیز کا ارادہ کیا ہے تو اللہ پاک سے وعدہ کیا ایک طرح سے, تو جب آپ کو شفا مل جائے تو اس وقت آپ اللہ کی راہ کے اندر 3 دن کا سفر کر لیں.
ٹھیک ہے. مزید
کہ جب یہ ایک چیز ابھی اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے, چیز کی ابھی بنی نہیں ہے, وہ چیز اس کی کیا سیل جائز ہے؟ اور اس میں استثناء والا کانٹریکٹ میرا نہیں ہوا, میں تو سمپل ایک بندے کے پاس گیا ہوں, میں نے کہا بھائی جان مجھے گاڑی چاہیے, اس نے کہا جی 50 لاکھ کی گاڑی ہے, ٹھیک ہے جی پیمنٹ کر دیں گاڑی مل جائے گی آپ, تو کیا یہ سیل ویلڈ سیل ہے؟
جی بے استثناء کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ,
دیکھیں بے استثناء ایک جدا گانا چیز ہے, وہ یہ مطلب ہوتا ہے جس کو بنوائی کہتے ہیں, یعنی آپ نے کوئی چیز بنوانی ہے تو اس کے لیے آپ نے آرڈر دے دیا, تو یہ ایک جدا گانا خرید و فروغ کی کاروبار کی ایک صورت ہے. جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں اور اس میں وہ چیز اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے اور اس بنیاد پر وہ آپ سے خرید و فروغ کر رہے ہیں تو یہ تو جائز ہی نہیں ہوگا. یعنی وہ گاڑی اس کے پاس نہیں جو آپ کو درکار ہے, جس کی آپ نے اس سے ڈیمانڈ کی ہے, وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے, وہ آپ سے پیسے لے لیتا ہے, آپ کا سودا ڈن ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ آپ کو کہیں اور سے لا کے کہیں اور سے خرید کر دیتا ہے, تو یہ سودا جائز نہیں ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبع ما لیس عندک, کہ جو تیرے پاس نہیں ہے یعنی جو تیرے قبضے کے اندر نہیں ہے اسے تو نہ بیچ, بیچنے سے منع فرمایا. تو اس لیے یا اس کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس سے وہ آپ سے وعدہ کر لے کہ میں اتنے کی یہ چیز آپ کو لا کر دے دوں گا, پھر وہ آپ کو لا کر دے دے تو اب آپ کا جو سودا ہے وہ مکمل ہوگا, لیکن پہلے سے ڈن کر لینا, اس کے پیسے دے دینا اور یہ کہنا کہ ہمارا سودا ہو گیا حالانکہ اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں تھی, تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے.
صدقہ فطر کی کتنی رقم ہوگی اس سال؟ صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارے دارالتال سنت کی ویب سائٹ پر بھی, فیس بک پیج پر بھی, یہ باقاعدہ جو دارالتال سنت کی طرف سے پاکستان کے لیے ایک ریٹ جاری کیے جاتے ہیں اور وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہے تاکہ سب کا ادا ہو جائے. تو گندم یعنی آٹا چکی والا 320 روپے, جو 800 روپے, کھجور درمیانی والی تو اس کا صدقہ فطر ایک 2800 روپے, اجوا کھجور 10,400 روپے اور کشمش 6,400 روپے. یہ مختلف صدقات فطر اس میں بیان کیے گئے ہیں, اور صدقات فطر کے اندر جہاں آٹے کا فرمایا ہے, جو کا بھی ذکر ہے, کشمش کا بھی ہے, کھجوروں کا بھی ہے. اب کھجوروں میں اچھی سے اچھی اعلیٰ کوالٹی کی جو کھجور ہے تو اس میں ذکر اجوا کا آتا ہے, تو اس طور پر اجوا کا بھی اس میں بیان وہ کر دیا گیا ہے. کیا اس کا وزن کتنا ہے اس اعتبار سے یہ جو لکھے ہیں, تو اس میں کوئی اپنے مطلب وزن کا کیا کہیں گے؟
گندم جو ہے اس کا وزن آدھا سا ہے, اور آدھا سا کا مطلب ہوتا ہے 2 کلو میں 80 گرام کم, 2 کلو میں 80 گرام کم کا جو وزن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, جس کو موٹے حساب میں آپ لے لیں کہ 2 کلو 2 کلو. اور باقی اس کے علاوہ جو 3 چیزیں ہیں جو ہے اسی طرح کشمش ہے, اسی طرح کھجور ہے, تو ان کا جو وزن حدیث پاک کے اندر ہے وہ 1 سا یعنی 4 کلو میں 160 گرام کم, جس کو آپ موٹے حساب کے اندر 4 کلو لے لیں, تو یہ اس کا وزن یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے. یعنی 3 تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, پھر گندم بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا, تو اجماع صحابہ سے اس کا جو وزن مقرر کیا گیا وہ آدھا سا مقرر کیا گیا اس زمانے کے اعتبار سے, تو پھر وہ چلتا چلتا اب تک آج تک آ رہا ہے. تو قیمتیں بتا دی گئی ہیں ہر جگہ پہ, جو بنیاد ہے وہ یہی ہے, 2 کلو آپ جو ہے وہ گندم لے لیں और बाकी जो तीन चीजें हैं जो हो गई खजूर हो गई किशमिश हो गई ये चार चार किलो आप चाहें तो ये भी उठा के दे सकते हैं। यानी किसी ने अगर 2 किलो उठा के आटा दे दिया तो भी उसका सदका फितर अदा हो जाएगा लेकर दे दिया। इसी तरह अगर किसी ने 4 किलो खजूर दे दी 4 किलो जौ दे दी या 4 किलो उसने किशमिश दे दी तो ये भी इससे सदका फितर अदा हो जाएगा। लेकिन जहर है कि आज के दौर में अमूमी तौर पर इस तरह से कोई सदका फितर अदा नहीं करता, इसीलिए उलमाए कराम फिर इनकी जो कीमतें होती हैं वो मोहतात अंदाजा लगाकर, क्योंकि हर मकाम पर अलग अलग कीमतें होती हैं, कहीं आटा कितने का किलो होगा तो कहीं कहीं पर होगा कुछ होगा, इसी तरह खजूर वगैरह की कीमतें भी अलग अलग होती हैं। तो एक मोहतात अंदाजा लगाकर कि सब का सदका फितर अदा हो जाए ये एक पैमाना बयान किया जाता है, एक रकम बयान की जाती है कि इसके मुताबिक आप अदा करते हैं।
और पूरे पाकिस्तान के लिए
जी ये ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए है,
यानी इसमें कराची में भी कुछ 10-15 रुपए के बाद का फर्क हो सकता है अपने इलाके के एतबार से, लेकिन ओवरऑल सबके लिए ये जारी होता है तो उसी रियायत के मुताबिक इसको 320 रुपए आटे के हिसाब से इसका ये रेट पाकिस्तानी पैसे। अच्छा इसमें ये खजूरों का जब जिक्र आया ना, मुझे एक बंदे ने एक दफ़ा बड़ी अजीब बात की कि 4 किलो खजूरें हैं तो वो कह रहे हैं हम तो मस्जिदों में 10-10 किलो जाके रखाते हैं जैसे इफ्तारी करवाते हैं, तो इस मस्जिद में 10 किलो दे दी तो उसमें दे दी उसमें दे दी, जो आम नॉर्मल इफ्तार होता है, तो ये भी इससे भी हमारा काफ़ी हो जाएगा सदका फितर।
देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सदका फितर और ज़कात इनमें तो ज़रूरी ही कि नीयत हो, यानी देते हुए आपकी इन चीज़ों की नीयत होगी, नीयत के बगैर ये अदा नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर ये शर्त है कि जिसको आप दे रहे हैं उसकी मिल्क करना ज़रूरी है, यानी बिठा के लोगों को आपने खिला दिया कि ये खा लें सारे आप, तो फिर इस सूरत में आपकी ज़कात और सदका फितर अदा नहीं होगा। इसमें तमलीक यानी मालिक करना ये शर्त होता है। तो मस्जिदों के अंदर कहीं ऐसा नहीं होता कि आप 10 किलो या 100 किलो खजूरें रख कर आ जाएँ, तो वो वही होता है कि जो यहाँ बैठ के खाना चाहे वो खा ले,
इफ्तारी हो
जाती है, कोई दूसरा उठाकर नहीं ले जा सकता। नहीं इसी तरह तो आप मस्जिद नबी अला साहिब सलाम में लोग पता नहीं कैसी कैसी नियमतें रख रहे होते हैं, तो अगर वो उसमें नियतें कर लें इस तरह की, यानी खजूरों के एतबार से खजूरें रख रहे होते हैं किशमिश रख रहे होते हैं, तो फिर तो पता नहीं कितने सदका फितर उनके अदा हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, असल ये होता है कि आपने देते हुए ये नीयत करनी है एक तो सदका फितर की, दूसरा आपने जिसको देना है उसको मालिक करना है, ये मुबाह करना कहलाता है कि जो खाना चाहे खा ले, इससे आपका ज़कात और सदका फितर अदा नहीं होते।
और तीसरा वो खुद हकदार भी हो,
जी जाहिर सी बात
जिसको देने
रहे हैं वो,
और जो ओवरऑल इस तरह इफ्तारी के मौके पर होते हैं उसमें कौन,
हर तरह के अफराद
हर तरह के इफ्तारी के, जी तो इन चीज़ों का भी बहरहाल वो ख्याल करना है। ज़कात बड़े मोहतात तरीके से अदा करनी है ताकि ज़कात और इसी तरह सदका फितर भी ये हमारे अदा हो जाए। बाकी वैसे भी ये इफ्तार करवाना और इस तरह की दीगर जो ये नफली चीज़ें, तो इनमें हमें अपने नफली पैसे मतलब आम पैसे निकाल कर साफ पैसों से आप ये अल्लाह के राह में खर्च कीजिए, इफ्तारियाँ भी करवाएं, बिल्कुल बहुत सवाब का काम है। बल्कि रोज़ेदार को जो एक घूंट भी पिलाएगा, बल्कि इसमें पेट भर के खिलाने वाले के लिए कि वो हौज़े कौसर से ऐसा पिएगा कि फिर कभी प्यास नहीं लगेगी उसको, तो जिससे ताकत हो ज़रूर ये अमल भी कीजिए। जी मजीद
के एक बंदा है, ठीक है, उस 90 लाख रुपए हैं जिसमें से ट्रैक्टर शोरूम है कारोबार के हवाले से, तो 45 लाख रुपए जो है ना वो पड़े हुए हैं और 45 लाख जो हैं वो हमारे किसी और पर कर्जा है, मतलब जो गाड़ी लेके गया है उन पर किस्तें हैं हमारी, तो कोई 1 माह में मिलेगा तो कोई 6 माह में मिलेगा। 90 लाख रुपए और भी है जो ईंट के बच्चे होते हैं ना उसमें लगे हुए, वो भी रकम अपनी है मेरी, वो जो है ना कुछ टाइम के बाद मिलेगी, जैसे उससे ज़कात का क्या हुक्म होगा?
जी कुछ पेमेंट इनकी कहीं लगी हुई है, अगरचे माले तजारत वो भी है, और कोई जो गाड़ी वगैरह बेच दी उसकी किस्तें आनी भी हैं, 45 लाख रुपए वसूल भी होने हैं, क्या कहते हैं?
देखें जो रकम मौजूद है इनके पास उसकी ज़कात तो फिलफौर देनी है, और जो मौजूद नहीं है ज़कात उसकी भी लाजिम है, उसकी भी देनी है। इसमें आसान और आफियत वाला तरीक़ेकार ये है कि आप अभी ही सारी रकम की ज़कात निकाल दें, लेकिन अगर अभी नहीं निकालते तो फिर जैसे जैसे निसाब का 5वां हिस्सा मिलता जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर अभी अगर निसाब जो है वो 1,30,000 या समथिंग कुछ बनता है मिसाल के तौर पर, या हम ले लेते हैं 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे बनता है निसाब, तो इसका जो 5वां हिस्सा वो बनेगा 20,000 रुपये, तो अगर वो मिल गए तो इसके ऊपर फिर ज़कात आपको इसके 5वें हिस्से की ज़कात आपको निकालना पड़ेगी। लेकिन निकालना बाहर सूरत है, अब ये सारी रकम आपको मिसाल के तौर पे 2 साल के बाद मिलती है, तो अब 2 साल की ज़कात फिर आपको एक साथ निकालना पड़ेगी। इसलिए बेहतर ये है कि आपके पास आपकी जितनी भी रकम आपके अपने पास मौजूद है, आपके कारोबार में लगी हुई है और लोगों से आनी है, लोगों के ऊपर आपका कर्ज है, उन तमाम का हिसाब लगाकर एक साथ ही आप ज़कात निकाल लें, ताकि फिर जब आए तो आपके ऊपर भारी ना पड़े अलग से निकालना।
ठीक ठीक है, और होना यही चाहिए कि जितना देना है आपने वो माइनस कर लें
जी,
और जो लेना है वो प्लस करके अभी से हिसाब कर लें। ठीक है, टोटल ज़कात निकालने का तरीका कोई आसान सा, 6 लाख किसी के पास है, 5 लाख हैं, 2 लाख हैं,
सिंपल, यानी लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। 2.5% निकालनी है, 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए निकलेंगे, इस हिसाब से जितने भी हो आप लगाते चले जाए,
40 पे तकसीम करके भी आराम
बन जाएगा जी।
कुछ SMS भी हैं, उनको भी शामिल करते हैं। घर से कोई खवातीन ये सदकात में कैसे शामिल हों, इनके पास तो अपने पास पैसे नहीं होते।
हाँ, ऐसा नहीं होता कि पैसे नहीं होते, आमतौर पर होते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो सदका है उसके लिए कोई लाखों रुपए दरकार हो, सदका थोड़ा सा भी हो सकता है। यानी हत्ता कि हदीस पाक के अंदर ये इरशाद फरमाया कि जहन्नम से अपने आप को बचाओ अगरचे कि खजूर का एक हिस्सा सदका करके, तो अगर खजूर, एक खजूर या उसका आधा हिस्सा भी आप अल्लाह की राह के अंदर दे तो ये भी सदका है। तो जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है उसमें से आप अल्लाह की राह के अंदर सदका निकालें। तो ऐसा नहीं है कि खवातीन के पास कुछ नहीं होता तो वो सदका नहीं कर सकती, आमतौर पे कुछ ना कुछ मौजूद होता है, और ना हो तो जो गुंजाइश अल्लाह पाक ने आपको दी है उसी के मुताबिक सदका करें। अगर कुछ भी नहीं है तो जो घर के अंदर खाना बनाया है उसी में से कुछ शौहर की इजाजत के साथ किसी को दे दिया गरीब को, तो ये भी अल्लाह की राह के अंदर सदका करना कहलाएगा।
ठीक है माशाल्लाह, और जो शौहर भी खर्च करते हैं, बल्कि एक हदीस पाक में जो हसन साहब वो कहा गया अल्लाह पाक ने हमारे आदिमों और गुलामों को भी महरूम नहीं रखा,
वो यही है कि एक हदीस पाक के मुताबिक जब शोहर कमाकर आता है, शोहर के माल से बीवी खाना बनाती है और खादिम को हुक्म होता है कि वो इसमें से कुछ हिस्सा सदका करेगा, तो फिर अल्लाह पाक तीनों को बराबर बराबर सवाब अता फरमाता है। यानी खादिम को ये ले जाकर देने का सदके का सवाब अता फरमाता है, शोहर को कमाने का अता करता है, बीवी को बनाने का अता करता है। फिर फरमाया कि अल्लाह पाक की हम दे के जो हमारे खादिमों को भी ना भूला, यानी उसने उनको भी सवाब से महरूम ना रखा।
जी मजीद को
मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मस्जिद की रकम से कोई प्राइस बॉन्ड खरीद कर वो इस नियत से रख सकता है कि इससे जितने भी प्राइस बॉन्ड खुलेंगे तो क्या मैं वो मस्जिद में इस्तेमाल कर सकता हूँ।
मजीद
सर, सवाल मेरा ये था कि हमारे वाले साहब ने ना 4 बेटों के नाम पे जो है ना मकान लगवा दिया हमारे नाम, तो क्या उसमें बहनों का हिस्सा होगा, वाला भी मौजूद
जी 4 बेटों के नाम का जी। मस्जिद के पैसों से तसरुफ ऐसा कर सकते हैं?
नहीं, ऐसा तसरुफ नहीं कर सकते। मस्जिद में जिसने चंदा दिया है उसने मस्जिद में इस्तेमाल के लिए दिया है, इस तरह जो है वो इसमें तसरुफ करके इससे ये चीजें खरीद लेना इसकी इजाजत नहीं।
जाहिर है ये खरीदो फरोख्त ही है बाकायदा, ये जो भी इस तरह मामला करना है तो इसकी इजाजत नहीं है। 4 बेटों के नाम पे मकान किया है, क्या वालदा का भी हिस्सा है?
देखिए आप किस तरह
है जितने
नाम किया, जाहिर सी बात है कि वो किस तरह नाम किया है सारा देखना होगा, वाले साहब खुद हयात भी हैं या नहीं है ये सारी तो मालूमात लेना पड़ेगी। दारुल सुन्नत में आप फोन पे पहले रब्ता कर लें।
ठीक है, और अगर आपके शहर में दारुल सुन्नत है तो बाकायदा जो भी जाहिर नाम किया है तो कोई लिखा हुआ होगा और मजीद किस कैफियत के साथ नाम किया है, आप उसी घर में सारे रहते हुए हैं और फिर ही नाम किया तो इसके अपने शरी मसाइल हैं। वाली साहब अभी हयात हैं या इंतकाल हो गया, तो इस सूरत में भी इनमें मसाइल में वो फ़र्क पड़ता है। तो ज़रूर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत जो भी आपके शहर में है, कराची शहर में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगहों पर दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मौजूद हैं, इसी तरह हैदराबाद में भी हैं, फैसलाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, रावलपिंडी, ये वो शहर हैं कि जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत की बाकायदा शाखें मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर भी अपने ये शरी मसाइल, बल्कि इस तरह का मसला हो तो उस पर पूरा फतवा ही हासिल किया जाए, ताकि आप अपने घर वालों को भी और दीगर अगर कोई मालूमात करीबी रिश्तेदार इस तरह की बातें कर रहे होते हैं तो आप उनको भी इत्मीनान दिला सकें। मजीद कुछ सवाल है, SMS आया कि 27 रमज़ान को निकाह करने की कोई फजीलत है?
कहीं पड़ी नहीं है
जी,
तो ऐसी कोई फजीलत पड़ी नहीं है, اور بظاہر ایسا کوئی لگتا نہیں ہے کہ خاص طور پہ کوئی اس کی فضیلت ہو. ہاں یہ ہے کہ جو
برکت حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی ان خاص تاریخوں کو, خاص مقام کو بھی, کئی مکہ مکرمہ میں, مدینہ منورہ میں, پھر رمضان کے دن روزے کی حالت, پھر اگر 27 جمعے کا دن آ جائے, پھر اس طرح کی جو
بہت ساری اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں. تو جو نیت پر قادر ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کہ سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ چونکہ مقدس مقامات اور مقدس اوقات کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ایسی واقعی کوئی صاحب نیت شخصیت ہے جو اس طرح کرتا ہے نکاح, تو بالکل اس کو اس دن کا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. گندم بھی دے سکتے ہیں یا صرف آٹا ہی دینا ہوگا؟
گندم بھی دے سکتے ہیں, اصل تو گندم ہی ہے, اور چاہیں تو اس کا آٹا بھی دے سکتے ہیں.
جی مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, کیا انسانوں کی طرح جنات پر بھی شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
آمین, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. انسانوں کی طرح جنات کے شرعی احکام, جی
جی بالکل, جو جنات ہیں وہ یہ احکام کے مکلف ہیں, ان کے اوپر احکام لازم ہوتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر جہاں انسانوں کو خطاب فرمایا, وہیں پر جنات کو بھی ارشاد فرمایا ان سے, جیسے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنات ان کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی طرح کئی مقامات پر ہے یا معشر الجن والانس, کہ اے انسان اور جنات کے گروہ, تو یہ احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں اور اس میں جنات کو مکلف کیا گیا ہے. تو جنات کے اوپر نمازیں بھی فرض ہوتی ہیں, روزے بھی فرض ہوتے ہیں, اور احکام بھی ان کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں.
اچھا, بقیہ فرق ہے کہ عام انسانوں میں جیسے مسلمانوں کے عام احکامات ہیں وہ جدا ہیں جنات کے اپنے اعتبار سے؟
دیکھیے فرق ہو سکتا ہے, لیکن اس کی ڈیٹیل تو بہت ہی مشکل ہے کہ مل پائے گی. چند ایک باتوں کے علاوہ جیسے غذا کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر ذکر آیا ہے, لیکن اب اس کی تفصیل بہت مشکل ہے کہ کسی مقام پر آپ کو مل پائے کہ ان کے کچھ احکام میں یوں نماز یوں پڑھنی ہے تو روزہ یوں رکھنا ہے, یہ عام طور پہ اس کا فرق نہیں ملے گا.
صحیح.
اور جو ظاہر حدیثوں کا وہ یہی کہ اسی انداز میں انہوں نے نماز پڑھنی ہے, اسی انداز میں انہوں نے روزے رکھنے ہیں. باقی رہا زکوٰۃ کا معاملہ, تو اس کے حوالے سے کہیں پڑھا نہیں کہ وہ مال و اسباب جمع کرتے ہوں اور پھر اس کے بعد ان کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہو, یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے.
جنت ہیں برحق, مطلب جنات کا انکار تو کوئی
جنات کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا, کفر ہے. یعنی باقاعدہ یہ مخلوق ہے, اس کو تسلیم کرنا یہ بھی ضروری ہے, یعنی ان کو ماننا کہ جنات ہیں اور یہ تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ مخلوق ہے,
وجود ہے,
وجود ہے ان کا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بدی کی قوت ہے یا یہ بس ایک جو ہے وہ کیفیت ہے, ایسا نہیں, بلکہ باقاعدہ یہ ایک وجود رکھتے ہیں, اور قرآن و سنت کے اندر کثرت کے ساتھ ان کا اسی انداز میں ذکر آیا ہے.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی مزید سوال.
عبد الباب عرض کر رہا ہوں ڈیر کی سندھ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھنا تھا عشر کے حوالے سے, کہ جو کسان ہوتے ہیں کسی زمیندار کی زمین وغیرہ کا کام کرتے ہیں, اور ریشو یہ ہوتا ہے کہ 50-50%, یعنی جو فصل اگے گی اس میں جو ملے گا وہ 50-50 ہوگا, عشر کیسے دیں گے؟ اور دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ جو زمین ٹھیکے پہ لی جاتی ہے, فار ایگزامپل 1,00,000 روپے ٹھیکے پہ لے گئی یا 50,000 ٹھیکے پہ لے گئی, تو اس کے لیے عشر نکالتے وقت اس اماؤنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا, یعنی مائنس وغیرہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
جی دیکھیں, عشر کا جو اصول ہے وہ ہے فصل کے اوپر, یعنی اس میں یہ خرچے یہ چیزیں مائنس نہیں ہوتی,
ٹھیکہ بھی نہیں مائنس,
ٹھیکہ بھی مائنس نہیں ہوتا. جس کے پاس جتنی فصل ہے اس کا اس نے عشر نکالنا ہے. تو اگر ہاف آپ کے پاس ہے, ہاف کسی اور کے پاس ہے, تو آپ نے ہاف ہاف یہ عشر نکالنا ہے. اور اگر پوری آپ کے پاس ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹھیکے کی رقم نکالنے کے بعد آپ جو ہے وہ عشر نکالیں, نہیں, بلکہ جو عشر ہے پیداوار اس کے اوپر آپ نے عشر نکالنا ہے, یہ چیزیں اس میں سے مائنس نہیں ہوں گی.
جی مزید سوال.
ساڑھے 6 تولے سونا ہے, زکات بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ پیسے تو نہیں ہے, 2 تولے چاندی ہے.
ٹھیک ہے, 6.5 تولے 2 تولے چاندی. پہلے عشر والے کے ساتھ ایک سوال وہ بھی تھا کہ اگر دونوں کے ہیں پارٹنرشپ,
جتنا آپ پارٹنرشپ دیں گے اس کے لیے تو ان کو رہنمائی لینا پڑے گی
کہ ہے کیا,
کس انداز میں کی ہے, لیکن اصول یہی ہے کہ جس کی جتنی فصل ہے اس کے اوپر ان کو عشر دینا ہوگا.
6.5 تولے سونا اور 2 تولے کچھ چاندی.
ہاں تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ خود بتائے نا کہ چاندی موجود ہے, تو तो जब सोने के साथ सोना 7.5 तोला से कम हो, लेकिन इसके साथ चांदी या रकम या बेचने का सामान हो, तो अब इनको आपस में मिलाएंगे और देखेंगे कि ये 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर है या नहीं है। और जाहिर है कि 6 या 6.5 तोला सोना होना और इसके साथ थोड़ी सी भी चांदी होगी तो मिलाकर देखेंगे तो ये 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाएगा और इस सूरत में ज़कात जो है वो लाजिम होगी, 2.5% के हिसाब से आपको ज़कात देना होगी।
जानवरों की ज़कात के क्या अहकाम होते हैं मैसी जाए?
देखिए तो बहुत तफसीली बात है, इसमें बुनियादी एतबार से तो ये है कि जो जानवर हैं अगर ये तिजारत के लिए लिए गए हैं, बेचने की नीयत से लिए गए थे, तो जो बेचने के लिए लिए गए जानवर हैं उनके ऊपर तिजारत के एतबार से ज़कात होगी 2.5%, उसकी कीमत के एतबार से आपको अल्लाह की राह के अंदर देना होगा, ज़कात निकालना होगी। बाकी इसके अलावा जो जानवर हैं जो घर में पालने के लिए लिए जाते हैं, उनसे मकसद होता है कि नस्ल बढ़ाएंगे, दूध हासिल करेंगे, इनकी अफजाइश करेंगे, तो उस पर दो चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। नंबर एक तो ये कि ऐसे जानवर को चराई के जानवर कहा जाता है जिसमें उसूल ये होता है कि साल का अक्सर हिस्सा इन्होंने बाहर जंगलात वगैरह से खाकर गुजारा हो, ऐसा ना हो कि घर के अंदर से पाल रहे हो, घर ही के अंदर घास लाई जा रही है, घर ही के अंदर इसको खिलाया पिलाया जा रहा है, साल का अक्सर हिस्सा घर के अंदर वो खा पी रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अव्वल तो शर्त यह है कि फिर पहले वो पलते जो हों वो बाहर की घास पर साल के अक्सर हिस्से में पलते हों, और दूसरा फिर इनकी तादाद होती है कि गाय के लिए 30 हो गई तो बकरियों के लिए फिर अलग हो गई, ऊँटों के लिए अलग हो गई, तो ये फिर तादाद को देखना होता है, उसके एतबार से ये ज़कात लाजिम होती है। और आमतौर पर शहरों के अंदर इसमें कम ही ये मामला होता है, अमूमी तौर पर जो देहात वगैरह होते हैं उसमें जानवरों की ज़कात के मसाइल आते हैं, तो उसके लिए फिर जिसके जितने भी जानवर हैं उसको दारुलफ्ता से बरह रास्त रहनुमाई लेना चाहिए।
और अब तो देहातों में बहुत मुश्किल हो गया कि जो साल का अक्सर हिस्सा बाद चराई का मामला, यानी अपने पूरी पूरी फसलें उगाते हैं और उनसे चारा काट के मुलाजिम रखे हुए हैं, या वैसे भी अपने खुद ही अगर एक दो जानवर दो चार भी रखे हुए हैं तो अपना ही चारा उसे डालते हैं, तो
बुनियाद तो यही है ना, देखें कि एक तो ये शर्त हो गई और दूसरा फिर तादाद भी ज़रूरी है।
तादाद भी ठीक है जी। नाज़रीन इकराम, आपने प्रोग्राम मुलाहज़ा किया, आप वक्त भी हमारे प्रोग्राम का अपने इख्तिताम तक पहुँचा है। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन जो सीखा है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहे नबी
हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला पूछ ले, हाजिर हो हम इनकी बारगाह।